दहकता इस्पाती दस्तावेज, शमशेर बहादुर सिंह। मुक्तिबोध ने छायावाद की सीमाएं लांघकर प्रगतिवाद से मार्क्सी दर्शन ले, प्रयोगवाद के अधिकांश हथियार संभाल और उसकी स्वतंत्रता महसूस कर स्वतंत्र कवि के रूप में सब वादों और पार्टियों से ऊपर उठकर निराला की सुथरी और खुली मानवतावादी परंपरा को बहुत आगे बढ़ाया। मुक्तिबोध हमेशा एक विशाल विस्तृत कैनवास लेता है जो समतल नहीं होता, जो सामाजिक जीवन के धर्म क्षेत्र और व्यक्ति चेतना के रंगभूमि को निरंतर जोड़ते हुए समय के कई कालक्षणों को प्रायः एक साथ आयामित करता है। लगता है इतिहास के संघर्ष एक षड्यंत्र का सा जाल फैलता सिमटता है और इस जाल में हम और आप अनजाने तौर से अनिवार्यतः फंस गए हैं और निकलने का रास्ता खोज रहे हैं, मगर कहीं कोई रास्ता नहीं है और फिर भी पक्का विश्वास है कि रास्ता है, रास्ता है। मुक्तिबोध की कविता को किसी राजना की बातों की तरह संभल संभल कर, सोच सोच कर, बल्कि कभी कभी दोहरा दोहरा कर पढ़ना चाहिए। किसी किसी कविता के कई अंश जासूसी उपन्यासों के भी याद दिलाते हैं, मगर वह हरगिज एक सपाटे में पढ़ लिए जाने वाले उपन्यास के से अंश नहीं है। मुक्तिबोध की कविता अद्भुत संकेतों भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से ही शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती हैं। हमारी बातें हम ही को सुनाती हैं और हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से और भी अधिक पहचानने लगते हैं। क्या बात है यह और क्यों है? मुक्तिबोध ने सब कुछ अपने ऊपर झेला था, अंग्रेजी शासन, युद्धकाल, सामंती सांप्रदायिक प्रतिक्रिया, प्रकाशकों की व्यावसायिक वृत्ति के चरम सीमा। मुक्तिबोध न हंस की संपादकीय में कुछ कर सके, न नया खून नागपुर में ही कुछ बना सके, सिवाय विरोधियों और उपेक्षा करने वालों की संख्या बढ़ाने के। आकाशवाणी में भी उनकी अव्यवहारिक सरलता और खुलेपन ने उन्हें टिकने नहीं दिया। जहां गए वह हलचलों के रेले में कुछ न कुछ खोते ही गए। हासिल किया उन्होंने केवल गहरा काव्य मर्म। उनका सारा जीवन बाहर से असफल, रिक्त, किंतु अंदर से रचनाकार की प्रतिभा से खूब समृद्ध हो चुका था। जीवन के बन बीहड़ में जो पलाश के क्षेत्र सुलग उठे थे, उनमें मानव रक्त की पवित्र गंध थी और एक निर्मलता जैसी कि उसके समकालीनों में कहीं न मिलेगी। मुक्तिबोध की कविताओं में सदैव एक साथीपन का भाव है। सबसे बड़ी बात उनमें यह है कि उनके अंदर मस्तिष्कहीन कोरी भावुकता, माइंडलेस फीलिंग नहीं है। उनके भावों के ज्वार के पीछे विचारों का दीर्घ दोहन है। मुक्तिबोध के हर इमेज के पीछे शक्ति होती है। वे हर वर्णन को दमदार, अर्थपूर्ण और चित्रमय बनाते हैं। संग्रह को कहीं से भी उलटिए, सर्वत्र इसके उदाहरण मिलेंगे। कुछ कवि अभिव्यक्ति के लिए विशिष्ट शब्द की खोज करते हैं। मुक्तिबोध विशिष्ट बिंब, बल्कि उससे अधिक विशिष्ट प्रतीक की योजना लाते हैं। उनके प्रतीक की कथा या गाथा, मिथ, सृष्टि की भूमिका बनाने लगते हैं। मुक्तिबोध की रचनात्मक प्रक्रिया में अद्भुत अनोखे का विद्युत प्राण चमकता है। रूढ़ी और परंपरा से वितृष्ण, उनसे विद्रोह और नई मानवता का साग्रह आह्वान उनकी शब्दावली को उत्तेजना से, रिटोरिक से भर देता है और चित्र विद्रूप तक हो उठते हैं। पर वस्तु तथ्य के आधार पर वे कभी कष्टकर नहीं होते। अगर उनके यहाँ मुक्त छंद की निरालीय गति में प्रस्तुत राजनीतिक सामाजिक इतिहास का मूल्यांकन जो काव्य तत्वों के माध्यम से होता चलता है, वही कवि की मुख्य शक्ति है। अपनी शैली में मुक्तिबोध अमूर्त को मूर्त करने की सहज शक्ति है। यह जरूर है कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि पेड़ों के जंगल में अकेले पेड़ का अस्तित्व खो जाता है, लेकिन तब उस जंगल का व्यक्तित्व इतना सजीव चित्रित होता है कि व्यक्ति की सजीवता उस पर ईर्ष्या करे। मुक्तिबोध की शक्तिशाली मानवतावादी रोमानियत में अमूर्त का सविस्तार मूर्तिकरण समाजवाद के धरातल पर प्रतिष्ठित किए जाने के कारण एक ऐसी प्रखर स्पष्टता धारण कर लेता है जिसमें भयानक से भयानक, विद्रूप से विद्रूप और कोमल से कोमल भी फैंटेसी को हम मानो अपनी सांस में महसूस कर सकते हैं। मुक्तिबोध की कुछ लंबी कविताएं आधुनिक हिंदी काव्य को विशिष्ट देन है, जिनमें अंधेरे में प्रमुख है। यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का, स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। देश की धरती, हवा, आकाश, देश की सच्ची मुक्ति आकांक्षी नस नस इसमें फड़क रही है और भावनाओं के अनेक गुंफित स्तरों पर डॉक्टर प्रभाकर माचवे का कहना है कि यह गुर्निशा इनवर्स है। इसके बहुत से अंश पिकासो के विश्व प्रसिद्ध चित्र जैसा ही प्रभाव डालते हैं। अंधेरे में मुक्तिबोध की एक ऐसी ही कविता है जिसमें उनकी काव्यात्मक शक्ति के अनेक तत्व घुल मिलकर एक महान रचना की सृष्टि करते हैं, जो रोमानी होते हुए भी अत्यधिक यथार्थवादी और एकदम आधुनिक है। और किसी भी कसौटी पर उसको जांचा जाए, मैं कहूँगा कि वह आधुनिक युग की कविताओं में सर्वोपरि ठहरती है। उसके बिंब और प्रतीक और संकेत और संदर्भ, शब्द और ध्वनि चित्र बड़ी गहरी और विविध गूंजे हमारी भावनाओं में भर जाते हैं। उसमें मुक्तिबोध का कवि व्यक्तित्व वाल्ट व्हिटमैन और मायकोवस्की के शिल्प और शक्ति से टक्कर लेता है और अपनी जमीन पर अप्रतिहत और अद्वितीय रहता है। इस कविता का हमारी अमर राष्ट्रीय कविताओं में शुमार होगा। इस कविता का हमारी अमर राष्ट्रीय कविताओं में शुमार होना, मुझे इसमें कंचित भी संदेह नहीं। हिंदी के स्वस्थतम आधुनिक काव्य सृष्टि का यह सर्वोपरि विजय चिन्ह है। निबंध समाप्त।